अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये एक मौलिक मानव अधिकार है, और ये भी सही है कि ऑस्ट्रेलिया में इसे स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है। दूसरी ओर गलत और भ्रामक सूचना एक गंभीर मुद्दा है, और इसे आज के समय का अभी सबसे बड़ा वैश्विक खतरा या जोखिम करार दिया गया है। तो हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित किए बिना गलत सूचना से कैसे लड़ सकते हैं या जूझ सकते हैं? मैं हूं अनीता बरार, और SBS एग्जामिन्स के इस अंश में आज बात इसी विषय पर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कहीं से भी किसी भी समय जो कुछ भी वे चाहते हैं साझा कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन है, इससे बड़ी आसानी से आप एक परस्पर जुड़ी दुनिया से जुड़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि झूठी जानकारी पहले से कहीं अधिक तेजी से और आपसे आगे भी साझा की जा सकती है, और हम जानते हैं कि इससे विभाजन, अविश्वास और कितने ही प्रकार के गंभीर नुकसान होते हैं। ये हैं पॉडकास्ट अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन के निर्माता और होस्ट जॉश शेप्स, जो अगले कुछ दशकों को लेकर बेहद चिंतित हैं।
I am extremely worried about the next few decades. I mean, look, we are a civilization that has suddenly been given a nuclear weapon of information in the form of social media and having supercomputers in our pockets, and that's about to have artificial intelligence dolloped onto it, like pouring gasoline on a fire.
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में मुखर होने के कारण वो इन विचारों के आदान प्रदान को गलत मानने और भ्रामक सूचना के रूप में समझने के बारे में चिंतित हैं।
The reality is that if you're going to live in a big, diverse, pluralistic, multi-ethnic society, at any given point in time, you're going to have to wrestle with a bunch of ideas that some cohort of that society is going to find offensive or insulting. And some of that will border on misinformation or disinformation.
उन्होंने सावधानी बरतने का आग्रह किया, क्योंकि ऑनलाइन पर गलत और भ्रामक सूचनाओं को नियंत्रित करने का प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि कौन ये तय करता है कि कौन सा विचार सीमा के बाहर है।
We all know that's a rhetorical question to some extent, because we know who gets to decide. The elites get to decide. University educated, generally socially progressive, generally white people like me, basically, get to write the rules about what everybody else can and can't say.
इसके बजाय हमें पहले ये समझना होगा कि ये तकनीकी कंपनियां काम कैसे करती हैं, ये किस तरह की सामग्री की ओर हमारा ध्यान बटा रही हैं, और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है।
At the moment, they're just black boxes, so I would be aggressive about regulating openness and requiring us to have access to the research that social media companies are doing about what kinds of content the algorithms are nudging us towards, what impact that has on our attention, and what impact that has on the quality of speech that is circulating online.
Digital platforms should be regulated just like any other consumer-facing sector. They should be liable for the harms they cause.
ये रीसेट टेक के कार्यकारी निदेशक एलिस डॉकिंस हैं। ये संगठन दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, या कहें कि कम से कम उनसे जुड़ने का प्रयास करता है। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली सामग्री को विनियमित करने यानी रेगुलेट करने के लिए नए कानूनों की आवश्यकता है। वो कहती हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में एक अजीब सी स्थिति में हैं। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धीमी गति से आगे बढ़ रही है, और व्यापक कानूनी दायित्वों की आवश्यकता है जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि हम इस देश में प्लेटफॉर्म से क्या अपेक्षा कर रहे हैं।
So we're in this awkward situation in Australia. Government is moving rather slowly on digital platforms, but ultimately you need overarching legal obligations that set pretty clearly what we're expecting platforms to do in this country. And if they fail on those promises, there should be meaningful enforcement that can happen through courts, for example.
Alice का कहना है कि वो समझ सकती हैं कि लोग क्यों सोचते हैं कि इस तरह का रेगुलेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला होगा.
The misinformation problem is often seen as, oh, well, you know, we've got to pull those crazy posts off the internet because, you know, Auntie Jo's spewing some fake news, right? Like that's often how it's framed, and that's why people have such a visceral response when they hear that there might be regulation over it.
लेकिन वो कहती हैं कि हमें जिस वास्तविक मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है, ये वो नहीं है कि आप या मैं ऑनलाइन पर क्या पोस्ट करते हैं. बल्कि ये फेसबुक या एक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पूर्ण रूप से विश्वसनीयता की बात है.
The common thread are various quite powerful systems within platforms control that are operated with varying levels of sort of efficacy and interest in providing good and reliable information because that's not how they make money at the end of the day.
इस तेजी से बदलते परिवेश में ये पता लगाने में समय लगेगा कि गलत सूचनाओं से कैसे निपटा जाए, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से. और ऑस्ट्रेलिया में पहले के किए गए प्रयास इतने सफल नहीं हुए हैं.
The Human Rights Commission said in a submission, there's a real risk that efforts to combat online misinformation and disinformation by foreign actors could be used to legitimize attempts to restrict public debate, censor unpopular opinions, and enforce ideological conformity in Australia.
मानवाधिकार आयुक्त लॉरेन फिनले का कहना है कि आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए कि गलत सूचना क्या है और सिर्फ एक राय नहीं जिससे हम असहमत हैं. इसलिए हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी कानून जो गलत या भ्रामक सूचनाओं को प्रतिबंधित या रोकने का लक्ष्य रखता है, वास्तव में उसी को ही लक्षित करता है.
It's actually false information and not just an opinion that we disagree with. So we need to make sure that any laws that aim to restrict or stop mis and disinformation actually target that and aren't just used as an excuse to censor opinions that we disagree with. So we need to both protect people from false information, but also make sure we're protecting freedom of speech at the same time.
Olivia DiOrio द्वारा तैयार किए गए इस एपिसोड को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता बरार ने.